देव गति में जाना है उसको, अनाहारक नहीं होगा। अनाहारक और अपर्याप्तक का अंतर समझना आप, अपर्याप्तक अंतर मुहूर्त तक रहता है, अनाहारक जो है एकम द्वौ त्रीन वा नाहारक, तीन समय तक ही अनाहारक रह सकता है। तो वो अनाहारक नहीं होगा लेकिन पर्याप्तक होने में उसको समय लग सकता है। जैसे मान लो मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में कोई जीव जा रहा है, अब देव पर्याय में बिना मोड़े की गति से जाएगा तो वहां पर वैकृत शरीर को धारण करते समय अंतर मुहूर्त के लिए वैकृत मिश्र अवस्था में रहेगा, तब तक वैकृत मिश्र अवस्था में वो पर्याप्तक नहीं माना जाएगा, अपर्याप्तक रहेगा। क्या ये जीव सिद्धांत भी साथ में पढ़ते हो फिर कर्म से? ये तो जीव सिद्धांत का ही पूरा वर्णन चल रहा है, कर्म सिद्धांत का अलग हिसाब किताब है। 148 कर्म प्रकृतियों के, बंध उदय सत्व उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्त निकाचना उपशम क्षय क्षय उपशम, ये सारी व्यवस्था उधर आती है कर्म सिद्धांत में। अभी तो केवल जीव सिद्धांत की बात चल रही है। तो इतना काल उसका आहारक अवस्था में निकल सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि अप्रमत्त अप्रमत्तानां, असंयत सम्यक दृष्टि अप्रमत्तानां, चौथे से सातवें गुणस्थान का अंतराल, नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा आहारक अवस्था में इनका अंतराल नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्नी नान्तर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल हो सकता है। वो कैसे? देखो टिप नीचे दिया है क्या? नहीं दिया। आहारक और अनाहारक, क्या अनाहारक नहीं होंगे? छठे गुणस्थान में जैसे वो मस्तक के ऊपर से जो निकलता ना आहारक रिद्धि से, एक एक हाथ ऊंचा स्फटिक के समान धवल आकृति एक शरीर निकलता है, आहारक शरीर बोलते हैं उसको, तो उसमें अनाहारक अवस्था नहीं बनती, क्योंकि अनाहारक अवस्था में संयम के गुणस्थान निचले गुणस्थान नहीं। चौदहवें गुणस्थान की बात छोड़ दो आप, और फिर तेरहवें गुणस्थान में केवली समुद्घात की बात छोड़ो, बाकी जो नीचे के गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में जैसे आहारक शरीर बन रहा है तो वो गुणस्थान छठा ही रहेगा, वो आहारक शरीर अलग है और अपना आहारक रहना अलग है। ये दोनों आहारक शब्द के अर्थ अलग अलग है। आहारक शरीर के लिए एक विशेष प्रकार की वर्गणा आती है, उससे उसका निर्माण होता है। और आहारक अनाहारक की जो बात है उसका मतलब यह है कि शरीर के योग्य और छह पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाएं हैं वो जीव जब तक ग्रहण कर रहा है तब तक आहारक है। ऐसा एक जीवन प्रतिगण अंतर्मूर्त उत्कर्षीण अंगुल असंख्य भागो संख्या संख्या उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्य, अधिक से अधिक अंतराल इन चार गुणस्थानों का भी एक जीव की अपेक्षा अंगुल का असंख्यातवा भाग है। मतलब उस असंख्यात विभाग में आकाश के जितने प्रदेश हैं तो उसको काल में परिवर्तित करो तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल हो जाते हैं। चतुर्णाम उपशमकानां नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, चार उपशमक के जो गुणस्थान है आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, इनका नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य के समान अंतराल है। एक जीवन प्रति जगन्नी अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतराल है। उत्कर्षीण अंगुल असंख्य भाग, अधिक से अधिक अंतराल अंगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण, अर्थात असंख्येय असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। चतुर्णां क्षपकाणां संयोग केवलिनां च सामान्यवत, चार क्षपक और संयोग केवली गुणस्थानों का अंतराल सामान्य के समान ही है। अयोग केवली क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह आहारक नहीं होते, अनाहारक होते हैं। अनाहारकेशु, अब अनाहारक गुणस्थान बता रहे, मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अथवा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में अनाहारक होगी दशा मिथ्यात्व के साथ, अब वहां पर गुणस्थान कैसे बदलोगे? और फिर आहारक बन के वापस अनाहारक बनो तो अनाहारक अवस्था में वो चीज बन नहीं सकती, क्योंकि एक तो अनाहारक रहना है और मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतराल निकालना है। अनाहारक अवस्था में मिथ्यात्व से कोई दूसरा गुणस्थान हो जाए और फिर वापस मिथ्यात्व में आए तब अंतराल निकलेगा, लेकिन अनाहारक अवस्था तीन समय तक रहती है ज्यादा से ज्यादा, एकम द्वौ त्रीन्वा अनाहारक, तो तीन समय में मिथ्यात्व से कहीं और जाकर वापस मिथ्यात्व में आना संभव नहीं है, अंतर्मुहूर्त तो लग ही जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा जगन्नी नहीं का समय, दूसरे गुणस्थान का अनाहारक अवस्था में नाना जीवों की अपेक्षा एक समय का अंतराल हो सकता है। उत्कर्षीण पल्लवम असंख्य भाग, अधिक से अधिक पल्लवम का असंख्यात्वा भाग अंतराल बनेगा। एक जीवम प्रति नास्ते अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनेगा, क्योंकि विग्रह गति में सासाधन गुणस्थान छोड़ के वापस सासाधन में आना संभव ही नहीं है, और वैसे भी सासाधन में आए तो कम से कम पल्लवम का असंख्यात्वा भाग तो अंतराल होता ही है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जगन्नी नहीं का समय, चौथे गुणस्थान का अंतराल अनाहारक अवस्था में नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का है, माने एक समय तक चौथे गुणस्थान के साथ कोई भी जीव मरण को प्राप्त न हो, तो मरण को प्राप्त हो और विग्रह गति में जाए तब अनाहारक अवस्था बनती है, न हो तो फिर एक समय का अंतराल बन सकता है, फिर एक समय के गैप के बाद फिर चले गए। उत्कर्षीण मास पृथक्त्वम, जानने योग्य बातें हैं ये सब, अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान के साथ विग्रह गति कितने समय तक नहीं बनेगी, तो बोले मास पृथक, तीन से नौ महीने तक कोई भी जीव चौथे गुणस्थान के साथ मरण को प्राप्त होकर विग्रह गति से कहीं दूसरी पर्याय में न जाए ऐसा संभव है। एक जीवम प्रति नास्त्यंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बन सकता, क्योंकि तीन समय में कहां गुणस्थान बदल के वापस आए, संभव नहीं है। संयोग केवल न, संयोग केवल तेरवा गुणस्थान उनका नाना जीवापेक्षा जगन्नी नहीं का समय, नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय का अंतराल है, मतलब एक समय बाद फिर कोई लोकपूर्ण या प्रतर समुद्घात में पहुंच जाए तो फिर अनाहारक हो सकते हैं तेरहवें गुणस्थान में। उत्कर्षीण वर्ष पृथक्त्व, अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व, ये याद रखने की चीज है, केवली समुद्घात करने वाले जीव अधिक से अधिक कितने समय तक एक भी जीव केवली समुद्घात न करे उतना अंतराल है ये वर्ष पृथक, तीन से लेकर नौ साल के बीच तक कोई भी जीव समुद्घात नहीं कर रहे हैं। केवल ज्ञानी तो अनेक हैं और मोक्ष जाने वाले तो 608 जीव 6 महीने 8 समय में फिक्स हैं, लेकिन तीन से लेकर नौ वर्ष के बीच तक कोई भी जीव केवली समुद्घात नहीं करेंगे, अर्थात बिना समुद्घात के मोक्ष चले जाएंगे ऐसा संभव है। विमलनाथ भगवान और पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान ने समुद्घात किया था अंत में, लेकिन सब तीर्थंकरों ने किया था ऐसा उल्लेख आचार्य गुणभद्र स्वामी ने नहीं किया है। पार्श्वनाथ भगवान तो सात प्रकार के केवली भगवान होते हैं, जिनको लिखने की इच्छा हो लिख लो, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। अपन जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो यदि नमो अरिहंताणम पद का ध्यान करना हो तो 46 गुणों का तो ध्यान कर ही सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ ही सात प्रकार के केवली भगवंतों का भी ज्ञान और ध्यान कर सकते, ज्ञान हो तो ध्यान करो, नहीं तो ये नाम ही नहीं आते हो तो फिर तो मुश्किल है, इनका स्वरूप भी मालूम हो सकता है। तो बात चल रही थी समुद्घात केवली की ना, तो समुद्घात में इतना अंतराल बन सकता है। पार्श्वनाथ भगवान तीन प्रकार के केवली में सम्मिलित होते थे, तीर्थंकर केवली भी थे वो, और अंत में समुद्घात किया सो समुद्घात केवली भी थे, और उपसर्ग में केवल ज्ञान प्राप्त किया इसलिए उपसर्ग केवली भी थे। ऐसा भंग बहुत दुर्लभ है मिलना, माने तीर्थंकरों में और सामान्य केवलियों में भी कहीं भी ऐसा मिलना मुश्किल है कि तीन तीन प्रकार के भेद एक ही जीव में घटित हो रहे हैं। एक जीवन प्रति नास्ते अंतर, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनता, क्योंकि दो बार समुद्घात नहीं होता, दो बार समुद्घात नहीं होता, दो बार अनाहारक नहीं बन सकते। अयोग केवल नाना जीवापेक्षा जगन्य नहीं का समय, चौदहवें गुणस्थान का अंतराल नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय है। उत्कर्षीण षण मासा, अधिक से अधिक छह महीने हैं, छह महीने बाद कोई ना कोई चौदहवें गुणस्थान में नियम से चले जाएंगे। एक जीवन प्रति नास्ते अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनता, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो चौदहवें गुणस्थान में अनारक रहते हुए गुणस्थान बदल कर वापस चौदहवें गुणस्थान में आ जाए। ये बदलने वाला गुणस्थान नहीं है, ये तो आखिरी गुणस्थान है, इसके बाद मुक्ति ही होती है। एक जीवन प्रति नास्ते अंतरम, अंतरम अवगतम, अंतर अवगत हो गया, अवगत यानी समझ लिया गया, जान लिया गया, यानी इतना वर्णन करने के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी को विश्वास है कि जो भी इसका अच्छे मनन के साथ और अच्छे ध्यान लगा करके स्वाध्याय करेगा वो जान ही लेगा कि अंतराल ये चीज है। सूत्र नंबर 8 और उसमें सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, सातवां अनुयोग द्वार, भाव जिसका नाम है भावो विभाव्यते, भाव का चिंतन किया जाता है। सद विविध दो प्रकार का है, भावों का विवरण विस्तार वर्णन दो प्रकार का है, सामान्येन विशेषेण च, सामान्य से यानी गुणस्थानों से, और विशेषण यानी मार्गणाओं के साथ। सामान्येन तावत, गुणस्थानों से देखो तो मिथ्या दृष्टिरित्यौदयिको भाव, पहला जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है वो औदयिक भाव है। तो वो पांच भाव है, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले ही सूत्र में औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदयिक पारिणामिको च, इन पांच भावों का नाम। तो पांच भावों का वर्णन कर रहे हैं, गुणस्थानों में कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव है ये बता रहे हैं, और फिर किन मार्गणाओं में फिर और विशेष विस्तार से बतलाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि रित्यौदयिको भाव है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जो है ये औदयिक भाव है। सासाधन सम्यक दृष्टि रित पारिणामिको भाव है, सासाधन सम्यक दृष्टि जो है वो पारिणामिक भाव है। एदे सव्य भावा दंसन मोहम पड़ुच्च भणिदा हो, गाथा आती है गुमट सार में कि ये सारे भाव जो हैं चौथे गुणस्थान तक वो सब दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कहे हुए हैं। चारित्रम नत्थि जदो अविरद अंतेसु ठाणेसु, क्योंकि चारित्र नाम की कोई वस्तु चौथे गुणस्थान तक नहीं होती है, ये उल्लेख है। तो सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुणस्थान जो पारिणामिक भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि रित क्षायोपशमिको भाव है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जो है वो क्षायोपशमिक भाव होता है। असंयत सम्यक दृष्टि रित औपशमिको व क्षायिको व क्षायोपशमिको व भाव, चौथा गुणस्थान जो है वो औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक, तीनों प्रकार का भाव बन सकता है। अगर सम्यक दर्शन औपशमिक है तो औपशमिक भाव हो गया, अगर क्षायिक है तो क्षायिक भाव होगा, और अगर क्षायोपशमिक है तो क्षायोपशमिक भाव होगा। असंयत पुनरौदयिकेन भावेन, और उसमें चौथे गुणस्थान में जो असंयम है वो औदयिक भाव यानी सर्वघाती कषाय के उदय से होता है। कितना संभाल कर वर्णन करते हैं आचार्य महाराज, नहीं तो अब भी इसको पकड़ करके कोई बैठ जाएगी, नहीं चौथे गुणस्थान में तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और औपशमिक भाव होता है, औदयिक भाव कहाँ से होगा। लेकिन कह रहे हैं असंयत पुनः औदयिकेन भावेन, असंयम जो है वहां पर वो औदयिक भाव की अपेक्षा से। संयता संयत प्रमत्त संयतो प्रमत्त संयत इति क्षायोपशमिको भाव, पांचवा छठा और सातवां गुणस्थान क्षायोपशमिक भाव है। अभी एक ग्रंथ लिखा गया था, बीच में एक पंडित जी ने लिखा था, राजमल पांडे उनका नाम था, अकबर के जमाने में, और काष्टा संघी विद्वान थे वो, उन्होंने जो पंचाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा संस्कृत भाषा में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मूल आगम पद्धति में आपको मिलेगी नहीं, और उसके आधार पर जैसे ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टियों में नियम से होती है, ये बात उन्होंने लिखी है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी कुछ और कहते हैं, ज्ञान चेतना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊपर चल करके ज्ञान चेतना की उपलब्धि होती है, शुद्ध ज्ञान चेतना की बात है। अभी जो अपनी चेतना चल रही है इसमें तो क्या है, कर्म कर्म फल चेतना यही चल रही है, त्रस का एक जीव होने के कारण है। कर्म चेतना होती है और स्थावर हो तो फिर सिर्फ कर्म फल चेतना है। तो ऐसी कुछ बातें हैं उसमें थोड़ा विवादित, और स्वरूपाचरण के बारे में भी उन्होंने उल्लेख कर दिया उसमें, आत्मानुभव और फिर प्रशम संवेग आस्तिक की अनुकंपा वगैरह, माने सम्यक दर्शन को कुछ अधिक महिमा मंडित करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन पांच भावों में से यहां क्या कह रहे हैं कि संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ये तीनों गुणस्थान क्षयोपशमिक भाव हैं। और विद्वानों के चिंतन में क्या है कि इन गुणस्थानों में जो भी महाव्रत या अणुव्रत रूप प्रवृत्ति होती है, वो महाव्रत और अणुव्रत जो होते हैं औदयिक भाव होते हैं, मंद कषाय से प्रवृत्ति होती है, यानी व्रत जो होते हैं वो कषायों के उदय से होते हैं, ये उनकी मान्यता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है व्रत कषाय के उदय से व्रत हो, ये बात सिद्धांत से बाधित हो जाती है। वो तो ठीक है मिथ्यात्व गुणस्थान में अगर कोई व्रत धारण करता है तो मिथ्यात्व चूंकि औदयिक भाव है तो उसके व्रत भी औदयिक भाव रूप होंगे, तो जिस गुणस्थान में जो भाव है उस गुणस्थान के व्रत उसी भाव रूप होंगे सिद्धांत की अपेक्षा से। इसलिए यहां पर चूंकि क्षयोपशमिक भाव का है इसलिए इन गुणस्थानों के जो व्रत है वो भी क्षयोपशमिक भाव रहेंगे। फिर चतुर्णा उपशमका नाम औपशमिको भाव, चार जो उपशमक गुणस्थान है 8, 9, 10, 11 इनमें औपशमिक भाव बताया। और चतुर्षु क्षपकेशु संयोग संयोगायोग केवल नोश्च क्षयिको भाव, और जो चार क्षपक हैं 8, 9, 10, 12 और संयोग केवली 13वां और अयोग केवली का गुणस्थान 14वां है, तो इन गुणस्थानों का भाव क्षयिक भाव है। अब इसके आगे जो मार्गणाओं में विवरण है उसका विवरण आगे चले, वही तो बताया ना, ये मतलब पूज्यपाद स्वामी ने संभाल लिया ये, नहीं तो अभी ये लोग सब तो मतलब जीत जाते युद्ध में। नहीं, पंचम गुणस्थान संयता संयत क्षयोपशमिक भाव है। अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गोमटसार जीवकांड की टीका में एक उल्लेख आता है पंचम गुणस्थान का, उसमें वर्णन है, वहां अभयचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि गुमटसार कर्मकांड में आप देखेंगे तो फिर वहां पर हो सकता है दो धाराएं हों आचार्यों की, वहां पर उन्होंने प्रत्याख्यानावरण को सर्वघाती माना है। लेकिन अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि सर्वघाती होते हुए भी मोटी पूरी प्रकृति को देखो तो सर्वघाती है, लेकिन उसमें भी देशघाती स्पर्धक हो सकते हैं। तो पंचम गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं होते, इसलिए क्षयोपशमिक भाव है। संहिता संयत जरूर है लेकिन क्षयोपशमिक भाव, और वो भी असंयम पूरा नहीं है उसमें, सिर्फ स्थावर संबंधी असंयम है। स्थावर कायिक जीवों की जो रक्षा नहीं कर पाता वो, क्योंकि अभी वस्त्रधारी है और फिर जो भी है उसमें जो कमियां हैं, बाकी तो फिर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है तो फिर वो प्रयास करता है, प्रयत्न में प्रवृत्ति में वो उन हिंसाओं से बचता है। लेकिन भावात्मक जो अविरति है प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाली जो अविरति है, तो उसमें उतना विशुद्धि का अभाव रहता है इस अपेक्षा से, वरना वहां पर सर्वघाती का निषेध किया है। ये इसके बारे में हमने नरसिंहपुर में आचार्य गुरुवर महाराज से पूछा था, तो आचार्य महाराज ने बोला कि दो धाराएं हैं जरूर, लेकिन उनको ऐसा लगा आचार्य श्री को कि ये वाली धारा जो अभयचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी की, ये अधिक पुरानी धारा है, ऐसा उनका कहना था। पर चूंकि दोनों उल्लेख है आगम में, इसलिए शिरोधार्य है। उसमें इसको सिलेक्ट करके मैं मानूंगा और फिर उसको रिजेक्ट करूंगा। सिलेक्ट और रिजेक्ट वाली बात जिनवाणी में नहीं चलती। ये आपके वोट देते समय पार्टियों में जो लिस्ट आती है ना, उसमें वोटर्स लिस्ट, या फिर वो अंदर जब जाते हैं वहाँ, तो बैलेट पेपर के ऊपर जो लिस्ट होती है वहाँ पर आप सिलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो जिनवाणी है, उसमें किसी बात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बात तो एक सच है, वीरसेन स्वामी ने कहा कि दो चीज़ें सच नहीं होगी। देखो, रावण की पुत्री है सीता, और फिर एक में कथा में जनक राजा की पुत्री है, तो फिर अब ऐसा तो संभव नहीं है कि दोनों की पुत्री हों। पुत्री एक है तो इसका मतलब ये है कि पिता भी एक होंगे। लेकिन चूंकि जब तक अपने पास कोई आधार नहीं, दो परंपराएं, दक्षिण प्रतिपत्ति और उत्तर प्रतिपत्ति, तो जिन आचार्यों को दक्षिण परंपरा मिली है, जिनको उत्तर परंपरा मिली है, तो इतना अंतर है। सच एक है, लेकिन चूंकि अपने पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है, या फिर कोई ऐसा बैरोमीटर, मैनोमीटर, कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जिससे सत्य और असत्य को अपन परख सके, इसलिए अपन ना परखें, दोनों को अपन संग्रह कर लें। और जब केवली भगवान मिले या श्रुत केवली मिले, तो फिर उनसे पूछ लेना कि जो हम पंचम काल में वहां पर कथा सुनते थे, तो क्या थी वास्तविकता, क्या थी? बड़ी सुंदर कथा थी वो, राम कथा, तो आप बताइए। तो फिर वहां से एक जवाब मिलेगा आपको, फिर निशंक हो जाना, कोई बात ही नहीं। अभी से अगर अश्रद्धा करोगे तो फिर केवली श्रुत केवली मिलना मुश्किल हो जाएंगे भविष्य में, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को थोड़ी मिलते हैं इतने आसानी से ऐसे संत समागम। भाव अनुयोग द्वार का वर्णन है, विशेषण गत्यनुवादन, मार्गणाओं की अपेक्षा से जो गति का जो अनुवाद है, अर्थात गति मार्गणा का जो प्ररूपण है उसकी अपेक्षा से। नरक गतौ प्रथमायाम पृथिव्याम नारकाणाम मिथ्या दृष्ट्याद्यसंयत सम्यक दृष्ट्यंतानाम सामान्यवत। नरक गति में पहली जो पृथ्वी है वहाँ के नारक जीवों का पहले से चौथे गुणस्थान का जो भावों का वर्णन है वो सामान्यवत, सामान्य जैसा ही है। द्वितीयादिश्वा सप्तम्या, दूसरी से सातवीं के पहले तक मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्यवत, पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थानों का जो भाव है वो सामान्य के समान है। असंयत सम्यक दृष्टि ही, असंयत सम्यक दृष्टि का औपिशमिको वा क्षायोपिशमिको वा भाव, असंयत सम्यक दृष्टि का औपशमिक सम्यक भी हो सकता है, क्षायोपशमिक भी हो सकता है। असंयत पुनरौदयिक इन भावे, लेकिन जो असंयम है वो औदयिक भाव की अपेक्षा से बनता है। सर्वघाती कषाय के उदय से असंयम होता है। अभी असप्तम्या जो है ये पूरा वहाँ तक के लेना, सातवीं पृथ्वी तक, सातवीं से पहले वाला न लेकर के असप्तम्या में पूरी सातवीं पृथ्वी तक, दूसरी से सातवीं पृथ्वी तक ये व्यवस्था। इसके आगे तिरेक गतो, त्रेंच गति आती है, उसमें तिरश्चाम मिथ्यादृष्टियादि संहिता संहितांता नाम, त्रियंचों के जो पहले से पाँचवें गुणस्थान का भाव है सामान्यवत, सामान्य के समान है। मनुष्यगतो मनुष्याणाम, मनुष्य गति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्ट्या देवग केवल जनता नाम सामान्यवत, पहले से चौदहवें गुणस्थान का जो भाव है सामान्य जैसा ही है। देवगतो देवानाम, देवगति में देवों का मिथ्या दृष्ट्या द्यसंयत सम्यक दृष्ट्यंता नाम सामान्यवत, पहले से चौथे गुणस्थानों का भाव सामान्य जैसा ही है। इंद्रियानुवादेन, अब इंद्रिय का जो कथन है उसकी अपेक्षा, इंद्रिय मार्गण, एक इंद्रिय विकल इंद्रियाणाम औदयिको भाव, एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय इन जीवों का औदयिक भाव होता है। पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्ट्या देवग केवलंतानाम सामान्यवत, पंचेन्द्रियों में पहले से चौदहवें गुणस्थान तक का जो भाव है सामान्य के समान है। एक इंद्रिय और विकल इंद्रियों में एक ही गुणस्थान है इसलिए औदयिक भाव है। कायानुवादेन स्थावर कायिकानाम औदयिको भाव, काय मार्गण में स्थावर कायिक जीवों का औदयिक भाव है। त्रस कायिका नाम सामान्यमेव, त्रस कायिक जीवों का जो सामान्य में भाव बतलाया था वही है। योगानुवादेन, अब योगानुवाद से काय वांग मनस योगी नाम, तीनों योग वाले मिथ्यादृष्ट्यादि सयोग केवल जनता नाम, पहले से तेरहवें गुणस्थान वालों का, या पहले से तेरहवें गुणस्थान का सामान्य में जो भाव है वो सामान्य ही है। वेदानुवादेन वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदानाम अवेदानां च सामान्यवत, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद वालों के गुणस्थान और अवेद अवस्था वालों के गुणस्थान सामान्य के समान है, उनके जो भाव है वो सामान्यवत है। कषायानुवादेन कषाय मार्गणा की अपेक्षा क्रोध मान माया लोभ कषायाणाम अकषायाणां च सामान्यवत, चार कषाय वालों का और अकषाय कषाय रहित जीवों का जो भाव है वो सामान्य में जो बतला है वही है। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी नाम मत श्रुतावधि मन परे केवल ज्ञानी नाम च सामान्यवत, ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा तीन मिथ्या ज्ञानियों के और पांच सम्यक ज्ञानियों के जो भाव होते हैं वो सामान्य में जो बतला है वही है। संयमानुवादेन ज्ञान के बाद संयम मार्गणा है तो संयम मार्गणा की अपेक्षा सर्वेषां संहिता नाम संहिता संहिता नाम असंहिता नाम च सामान्यवत, सब संयतों के संहिता संयतों के और असंयतों के जो भाव है वो सामान्य के समान है। दर्शनानुवादेन दर्शन मार्गणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनावधि दर्शन केवल दर्शनी नाम सामान्यवत, चारों दर्शन वाले जो जीव हैं उनके गुण स्थानों में जो भाव बनते हैं वो सामान्य के समान है। लेश्यानुवादेन षड लेश्यानाम अलेश्यानाम च सामान्यवत, लेश्या मार्गणा की अपेक्षा छह लेश्या वालों के और अलेश्या वालों के, अलेश्या चौदहवें गुणस्थान में, इन सबके सामान्य के समान ही भाव है। भव्यानुवादेन भव्यानाम मिथ्या दृष्टिया देव के केवल इंता नाम सामान्यवत, भव्य जीवों के जो मिथ्या दृष्टि से लेकर चौदहवा गुणस्थान है उनका भाव सामान्यवत सामान्य के समान है। अभव्यानाम पारिणामिको भाव है, अभव्यों का जो भाव है वो पारिणामिक है क्योंकि अभव्यत्व स्वयं पारिणामिक भाव है। सम्यक्त अनुवादीन है, अब सम्यक्त मारणा आती है भव्य के बाद, क्षायिक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि ही क्षायिको भाव है, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में चौथे गुणस्थान का जो भाव बनेगा क्षायिक भाव बनेगा। क्षायिकम सम्यक्तम क्षायिक जो है वो सम्यक्त है लेकिन असंयतत्व असंयतपना जो है वो औदयिकेन भावेन औदयिक भाव की अपेक्षा से है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम क्षायोपशमिको भाव है, पांचवें से सातवें गुणस्थान तक का जो भाव होता है क्षायोपशमिक भाव होता है। क्षायिकम सम्यक्तम क्षायिक सम्यक तो रहेगा वहां पर क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। चतुर्नाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, चार जो उपशमक है लेकिन सम्यक दर्शन कौन सा है क्षायिकम सम्यक्तम, उनका औपशमिक भाव माना जाता है। शेषाणाम सामान्यवत बाकी गुणस्थानों के जो भाव हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि के साथ वो सामान्य के समान है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि क्षायोपशमिको भाव, चौथे गुणस्थान का जो भाव बनेगा वो क्षायोपशमिक बनेगा और क्षायोपशमिकम सम्यक्तम सम्यक भी वही रहेगा। असंयत है पुनरौदयिक भावेन और असंयत जो है असंयम वो औदयिक भाव की अपेक्षा है। संहिता संहिता प्रमत्ता प्रमत्ता संहिता नाम क्षायोपशमिको भाव, पाँच छः और सात इन तीन गुणस्थानों का भाव क्षायोपशमिक भाव है। क्षायोपशमिकम सम्यक्तम सम्यक भी क्षायोपशमिक है। औपशमिक सम्यक दृष्टिषु औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि औपशमिको भाव, चौथे गुणस्थान का औपशमिक भाव है। औपशमिकम सम्यक्तम और औपशमिक सम्यक्त भी है। असंयत है पुनरौदयिकेन भावेन, असंयम जो है वो औदयिक भाव अर्थात कषाय के उदय से है। संहिता संहित प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम क्षायोपशमिको भाव, पांचवा छठा और सातवां गुणस्थान जो होता है वो चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि का क्यों ना हो लेकिन वो गुणस्थान क्षायोपशमिक भाव होता है। औपशमिकम सम्यक्तम सम्यक तो औपशमिक है। चतुर्णाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, चार जो उपशमक है आठ नौ दस और ग्यारह इनका औपशमिक भाव बनेगा। औपशमिकम सम्यक्तम औपशमिक सम्यक्त रहेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि है फिर सम्यक्त मार्गणा में निचले वाले भी ले लेते हैं भेद, सासाधन सम्यक दृष्टि का पारिणामिको भाव है क्योंकि दर्शन मोह की अपेक्षा से वहां पर न उदय है न उपशमिक क्षय कुछ नहीं, वो पारिणामिक भाव कहलाता है। वहां सिर्फ चारित्र मोहनी का उदय रहता है। दूसरा गुणस्थान बड़ा विचित्र है, दर्शन मोहनी की एक भी प्रकृति उदय में नहीं होती, न मिथ्यात्व न सम्यक मिथ्यात्व न सम्यक्त प्रकृति, इसलिए पारिणामिक भाव कहा। सम्यक मिथ्या दृष्टि ही क्षायोपशमिको भाव, सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्षायोपशमिक भाव कह दिया है क्योंकि दर्शन मोहनी की वो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसको जात्यंतर सर्वघाती माना गया है। उस अपेक्षा जात्यंतर मतलब कोई अलग जाति की सर्वघाती, तो उस अपेक्षा से उसको क्षायोपशमिक भाव कह दिया है। मिथ्या दृष्टि औदयिको भाव, मिथ्या दृष्टि का औदयिक भाव है।